ये रेडियो नेपाल है। हिंदी समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं मीनू प्रधान। आरंभ में आज के मुख्य समाचार शीर्षक। संविधान क्रियान्वयन के क्रम में आवश्यक प्रतीत होने वाले विषयों में संशोधन के लिए सरकार तैयार है, प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का कथन। काठमांडू घाटी में 859 समेत देशभर में एक ही दिन में कोरोना के रिकॉर्ड 2020 नए मामले आए सामने। कूटनैतिक संवाद और विचार विमर्श के माध्यम से ही भार के साथ सीमा समस्या का किया जाएगा समाधान। और यूरोप में एक हफ्ते के अंदर कोरोना संक्रमितों की तादाद 3 लाख से ऊपर होने के बाद WHO ने किया सचेत होने का आग्रह। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कहा, संविधान क्रियान्वयन के क्रम में आवश्यक प्रतीत होने वाले विषयों में संशोधन के लिए सरकार तैयार है। संविधान दिवस की पूर्व संध्या में काठमांडू स्कूल ऑफ लॉ और साउथ एशिया ट्रस्ट द्वारा प्रकाशित अ ट्रीटी ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेपाल पुस्तक का आज प्रधानमंत्री निवास बालवाटार में लोकार्पण करते हुए प्रधानमंत्री ओली ने ये बात कही। आगे उन्होंने कहा, विश्व के विभिन्न देशों के संविधानों की तुलना में संभवतः अधिक मौलिक अधिकारों का प्रावधान समाविष्ट नेपाल का संविधान एक गतिशील दस्तावेज है। इस बात का जिक्र करते हुए कि किसी के बहकावे में आकर संविधान संशोधन की कार्यसूची नहीं लाई जानी चाहिए, उन्होंने कहा कि राष्ट्रीयता के सवाल पर जिस तरह सब एकमत हुए और नेपाल के नए राजनीतिक नक्शे को दूसरे संशोधन के जरिए समेटा गया, इससे यह साफ जाहिर होता है कि राष्ट्रीय एकता बहाल करने की क्षमता संविधान में है। मौके पर नेपाली कांग्रेस के नेता डॉ रामशरण महत ने भी संविधान के विभिन्न पहलुओं की प्रशंसा की। देशभर में आज एक ही दिन में 2000 से अधिक कोरोना संक्रमण के नए मामले सामने आए हैं, जो कि अब तक की रिकॉर्ड संख्या है। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय की नियमित प्रेस ब्रीफिंग के क्रम में आज मंत्रालय के प्रवक्ता प्राध्यापक डॉ जागेश्वर गौतम ने बताया कि कुल 11400 लोगों के लिए पीसीआर टेस्ट में से 1381 पुरुषों और 639 महिलाओं समेत कुल 2020 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उनके मुताबिक कुल संक्रमितों में से 859 संक्रमित सिर्फ काठमांडू घाटी के ही हैं, जबकि इसमें 50 जिलों के संक्रमित शामिल हैं। इसे मिलाकर देश भर में अब तक संक्रमित होने वालों की तादाद बढ़कर 61513 हो गई है। वहीं आज 871 लोग संक्रमण मुक्त भी हुए हैं। इस तरह अब तक संक्रमण मुक्त होने वालों की दर 71.01% है। बहरहाल देश भर में सक्रिय संक्रमितों की संख्या 17383 है। वहीं आज 7 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई है। इसके साथ ही नेपाल में कोरोना संक्रमित होकर मरने वालों की तादाद 390 हो चुकी है। बता दें कि कोरोना से होने वाली मृत्यु दर 0.63 है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने काठमांडू घाटी समेत घनी आबादी वाले शहरों व कस्बों में रहने वाले 60 वर्ष से ऊपर की उम्र वालों से अत्यावश्यक काम को छोड़कर अन्य कामों के लिए घर से बाहर न निकलने का आग्रह किया है। पूर्व राष्ट्रपति डॉ रामवरण यादव ने विधायिका, सरकार और राजनीतिक दलों को संविधान के क्रियान्वयन के संदर्भ में लोकतंत्र के मर्म और संविधान की भावना की कद्र करते हुए कदम बढ़ाने का आग्रह किया है। संविधान जारी हुए 5 वर्ष पूरे होने के अवसर पर संविधान दिवस के संदर्भ और समसामयिक विषयों पर अपने विचार रखते हुए पूर्व राष्ट्रपति डॉ यादव ने ये बात कही। ये बताते हुए कि इस संविधान में समावेशिता, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता जैसे बहुत से महत्वपूर्ण विषय समाविष्ट हैं। उन्होंने कहा कि फिर भी जहां कहीं असंतुष्टि है, उन असंतुष्टि की आवाजों को सहिष्णु होकर संबोधित किया जाना चाहिए। नेपाली कांग्रेस के सभापति शेर बहादुर देउवा ने कहा कि कांग्रेस के संस्थापक नेता गणेशमान सिंह नेपाली राजनीति के शिखर पुरुष थे। नेता गणेशमान सिंह के 23वें स्मृति दिवस के अवसर पर आज काठमांडू में आयोजित कार्यक्रम में सभापति देउवा ने नेता सिंह के व्यक्तित्व के विभिन्न आयामों की प्रशंसा की। मौके पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रामचंद्र पौड़ेल, नेता प्रकाशमान सिंह लगायत ने भी उनके योगदानों की चर्चा की थी। परराष्ट्र मंत्री प्रदीप कुमार गेवाली ने कहा कि भारत के साथ कूटनैतिक संवाद और विचार विमर्श के माध्यम से ही सीमा समस्या का समाधान किया जाएगा। आज प्रेस संगठन रूपंदेही द्वारा बुलाए गए प्रेस कॉन्फ्रेंस में परराष्ट्र मंत्री गेवाली ने ये बात कही। साथ ही ये साफ करते हुए कि नेपाल किसी निश्चित पड़ोसी देश की तरफ अधिक झुकाव से परहेज रहेगा, उन्होंने बताया कि सीमा समस्या समाधान लगायत मुद्दों पर भारत के साथ प्रधानमंत्री स्तर पर 4 बार फोन संवाद हो चुका है। उन्होंने विश्वास जताया कि अतिक्रमित काला पानी लिम्पियाधुरा लगायत नेपाली भूमि वापस हासिल करने की दिशा में भारत के साथ जल्द ही ठोस वार्ता होगी। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा सचिवालय की आज के लिए तय की गई बैठक परसों रविवार दोपहर 11 बजे तक के लिए स्थगित की गई है। ये जानकारी पार्टी के प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठ ने दी है। समाचार रेडियो नेपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं समय है व्यापारिक विश्राम का।
संविधान दिवस को उपलक्ष्य में नेपाल टेलिकम ने ल्याएको छ आकर्षक डाटा पैकेज अफर। यूट्यूब रू 55 में 3 दिन अनलिमिटेड, फेसबुक पनि रू 55 में 3 दिन अनलिमिटेड, साथ ही 1 GB पर डे 28 दिन को रू 555 मात्र। प्याकेज खरीद कर *14*15*11# डायल कर। यो अफर यही असोज 2 गति देखि 4 गति सम्म खरीद कर सकिने।
अब बाकी समाचार। नेपाल की आर्थिक स्थिति में सुधार के मद्देनजर विश्व बैंक नेपाल को 23 अरब 60 करोड़ रुपयों का सहयोग करेगा। कोविड-19 के महामारी से उत्पन्न सामाजिक आर्थिक चुनौतियों का सामना करने के लिए नेपाल सरकार के वित्तीय क्षेत्र में सुधार के मकसद से ये रकम ऋण स्वरूप प्रदान किए जाने की बात कही गई है। ये जानकारी बैंक के वाशिंगटन स्थित प्रधान कार्यालय ने दी है। जनकपुर जयनगर चलने वाली 2 सेट रेलों को आज जनकपुर धाम में लाया गया है। इन्हें भारतीय सरकार की कंपनी कोकान रेलवेज कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा स्टेशन में लाया गया। ये जानकारी नेपाल रेल विभाग के सीनियर डिवीजनल इंजीनियर देवेंद्र प्रसाद साहा ने दी। पहले चरण में भारत के जयनगर से जनकपुर धाम के कुर्था तक 35 किलोमीटर की दूरी तक रेल को चलाने के लिए संपूर्ण तैयारियां हो चुकी हैं। बता दें कि जिस रेल को नेपाल सरकार ने खरीदा है इनमें 8 बोगी और 2 इंजन हैं। मोहतरी की औरही नगर पालिका में कार्यरत स्वास्थ्य कर्मियों ने विभिन्न सेवा सुविधाओं की मांग करते हुए नगर पालिका के निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत को ज्ञापन पत्र सौंपा है। ज्ञापन पत्र में कोविड-19 की विषम परिस्थिति में फ्रंट लाइन में रहकर काम कर रहे स्वास्थ्य कर्मियों को जोखिम भत्ता मुहैया कराने, जिन लोगों को पदस्थापन नहीं हुआ है उन लोगों का पदस्थापन करने आदि की मांगे की गई है। कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण आई बाढ़ और भूस्खलन में देश के विभिन्न जिलों में जनजीवन प्रभावित है। वर्षा के कारण सिंधुपाल चौकी जुगल गांव पालिका वार्ड नंबर 1 की सेलांग के 88 से ज्यादा घर परिवार उच्च जोखिम में हैं। ये जानकारी वार्ड अध्यक्ष कमल थापा ने दी है। इसी तरह पर्वत फलेवास नगर पालिका वार्ड नंबर 10 कुरघा स्थित फल्ला गांव के 25 घर परिवार जोखिम में हैं। ये जानकारी स्थानीय लोकेंद्र पौड़ेल के हवाले से हमारे संवाददाता ने दी। जबकि बाढ़ के कारण बागरूम की ढोर पाटन के निवासी विद्युत और संचार सेवा से वंचित हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय प्रसंग। यूरोप में एक हफ्ते के अंदर 3 लाख से भी ज्यादा लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि होने के बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने चिंता जताते हुए लापरवाही न करने का आग्रह किया है। इसी तरह इसराइल ने कोरोना संक्रमण के जोखिम के मद्देनजर दूसरे चरण का लॉकडाउन किया है, जबकि चीन ने भी म्यांमार की सीमा पर 2 लोगों में कोरोना की पुष्टि होने के बाद नो एनी मूवमेंट लॉकडाउन यानी जो जहां है वो वहीं रहे की घोषणा की है। वहीं दुनिया में कोरोना वायरस से अब तक 3,04,86,000 से अधिक लोग संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 2,21,65,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं, वहीं 9,52,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 27 से 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 25.6 और न्यूनतम तापमान 20.8 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार शीर्षक एक बार फिर से। संविधान क्रियान्वयन के क्रम में आवश्यक प्रतीत होने वाले विषयों में संशोधन के लिए सरकार तैयार है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का कथन। काठमांडू घाटी में 859 समेत देशभर में एक ही दिन में कोरोना के रिकॉर्ड 2020 नए मामले आए सामने। कूटनीतिक संवाद और विचार विमर्श के माध्यम से ही भारत के साथ सीमा समस्या का किया जाएगा समाधान। और यूरोप में एक हफ्ते के अंदर कोरोना संक्रमितों की तादाद 3 लाख से ऊपर होने के बाद WHO ने किया सचेत होने का आग्रह। इसी के साथ हिंदी समाचार बुलेटिन से मुझे आज्ञा दीजिए, सुनते रहिए रेडियो नेपाल। शुभरात्रि।